ओम शांति। आदरणीय अंबिका दीदी हमारे मध्य हैं, हमसे कल इनॉग्रेशन के समय भी दीदी रूबरू हुए थे और आज बाबा प्यारे बाबा की मुरली को हमने आपके माध्यम से सुना, तो हम दीदी का एक हाथ की ताली से बहुत बहुत अभिवादन तो नहीं कहेंगे लेकिन दिल से शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि आप स्पार्क विंग के चेयरपर्सन भी हैं और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और वीवीपुरम जो अपना बैंगलोर में वीवीपुरम सब जोन है उसके डायरेक्टर हैं। आपके अंतर्गत आपके ही सानिध्य में अगर कहें तो 350 से भी ज़्यादा जो सेंटर्स हैं उनको आप डायरेक्ट करती हैं, उनको आप संचालित करती हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छी बात हृदय पुष्पा दादी जी के साथ आपने पालना ली और आज उनकी पालना का स्वरूप हम आपके व्यक्तित्व में देखते हैं। तो ऐसे हमारे अंबिका दीदी का पुनः पुनः इस स्पार्क कम भट्टी में ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें दिल से आपका थैंक यू भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, श्रेष्ठ स्थिति और शक्तिशाली वायुमंडल द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता, श्रेष्ठ स्थिति और शक्तिशाली वायुमंडल द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता। आदरणीय अंबिका दीदी,
थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के ये महावाक्य सुन चुके हैं कि अगर मेरी प्रत्यक्षता करना चाहते हो तो आप भाषण द्वारा या और कोई भी मीडिया द्वारा मेरी प्रत्यक्षता नहीं कर सकते हो। मेरी प्रत्यक्षता का आधार है चेहरा और चलन द्वारा आपकी संपूर्ण परिवर्तन और योग जो है उसके आधार से ही मेरी प्रत्यक्षता कर सकते हो। इसमें मैंने जो जीवन में देखा बहुत नज़दीकी से, श्रेष्ठ स्थिति क्या होती है और उसका जो वाइब्रेशंस क्या होता है, उसका असर वायुमंडल पर, उसका असर जो भी सामने आते हैं उन पर क्या होता है, वो मैंने दादियों द्वारा देखा। क्योंकि जब वो योग में बैठते थे तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति जो बिल्कुल हम सभी चाहते हैं वो है विदेही होकर बाबा की यादों में जब हम खो जाते हैं, बाबा की गुणों का स्वरूप की अनुभूति जो करते हैं, उस घड़ी जो वायुमंडल बनता है उसका असर अपने प्रति, अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर जो होता है वो है सर्वश्रेष्ठ स्थिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव और प्रभाव में परिवर्तन, वो रिजल्ट मैंने देखा है। क्योंकि दादी जब एक्सट्रीम प्यार में संपूर्ण विदेही होके बैठते थे, मैं हृदय पुष्पा दादी की बात करती हूँ, तो उनके आगे से हम बाबा के बच्चे बैठते तो हमें मालूम होता कि इनको बाबा की याद है और बाबा के प्यार में खोए हुए हैं। लेकिन जब नए आके बैठते थे जिनको कोई परिचय नहीं होता था, तो वो जब आके देखते थे तो आते ही नज़र पड़ी, बिल्कुल वो हशरीरी हो गए, कहाँ है मालूम नहीं। वो लाइट, वो तेज जिसके आधार से बहुत टाइम ऐसे सुध-बुध भूल के ऐसी एक गहरी शांति और शीतलता का अनुभव करते, फिर हम उनको ऐसे करके उठाना पड़ता था। और जो भी बड़े बड़े, पहले दादी को भाषा भी नहीं आता, माना ना भाषा ना भाषण ना कोई और बातों से हम बाबा को दूसरे की दिलों तक, उनके अनुभवों तक नहीं ले जा सकते। तो जब वो आते थे तो एक भाई आके, सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उन्होंने सोचा यहाँ कोई यूनिवर्सिटी होगा, अंदर आके बैठे। अंदर आके जब बैठे तो दादी क्लास में बैठे थे, थोड़े से लोग थे, दादी दृष्टि दे रहे थे, तो वो आके पीछे बैठ गए एक चेयर लेकर के, कुछ भी मालूम नहीं था। तो ये एक दो को देख रहे हैं, ये क्या, सिर्फ ये विश्वविद्यालय, ये लोग उसको देखते, वो लोग इसको देखते, सिर्फ देखने का विश्वविद्यालय है। ऐसे सोच सोच करके बैठ गए। तो फिर जब दादी की दृष्टि देते देते इन पर पड़े, इतनी लाइट, इतनी तेज, इतनी एक शक्ति, एक दिव्यता की ऐसी अनुभव हुआ, उन्होंने सोचा यहाँ तो कुछ है, ऐसे ही ये नहीं देख रहे। फिर उठ के चले गए, बैठे नहीं। तो बाद में जब आए, ज्ञान को समझा, दृष्टि से फिर वो जब ताकत मिली तो सोचा ये परमात्मा का ज्ञान है, और कोई ऐसी ताकत दे नहीं सकता जो दिलों को पिघला देते, दिलों को परिवर्तन करता, यहाँ सच्चाई है। तो ऐसे जब मैं पहली बार आई, प्रकाशमणि दादी दृष्टि दे रहे थे, दृष्टि में मैंने तीन बातें देखा। उनकी मस्तक में बिंदु चमक रहा था, आंखों से ऐसे जैसे लेजर लाइट आती है ना, लेजर लाइट, ऐसे लाइट ऐसे पड़ रहा था। उनके सिर के पीछे एक ताज, पीछे एक ताज था, ऐसी लाइट की ताज, ऐसी ब्राइट था वो, मैंने तो जीवन में कहीं और तो देखा नहीं था। तो ये जो त्रिमूर्ति लाइट की जो साक्षात्कार था, तो ये भगवान की ताकत और उनके जीवन की जो पवित्रता थी, उनके बाबा की यादों में ऐसे खोए हुए थे, जैसे इतनी एकाग्रता घंटों तक जो मैंने देखा, तो वो सारे जीवन को बदला दिया। माना कहने का भाव ये है, हम जीवन में विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी बाबा दिया है, वो लेकर के हम सब चले हैं, लेकिन इस जर्नी में, सेवा में, अगर बाबा से हमारा प्यार है, उनका सच्ची दिल से हम सेवा करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा पहला कदम सफलता की वो स्व परिवर्तन है। स्व परिवर्तन में मना श्रेष्ठ स्थिति की परिभाषा, श्रेष्ठ स्थिति जो बनती है हमारी स्मृतियों द्वारा, जो ज्ञान की भिन्न भिन्न स्मृतियाँ समर्थ स्मृतियाँ ज्ञान की गहराइयों के आधार से हम ज्ञान स्वरूप ज्ञान को स्वरूप में लाते हुए अपनी आत्मा को जितना शक्तिशाली बनाते जाएंगे। जो शक्तिशाली स्थिति माना अपनी निजी स्वरूप में आत्मा हो, हमें मालूम है आत्मा यहाँ आई हो, इस सृष्टि में पाठ बजाने मैं आई हूँ, कर्म क्षेत्र पर कर्म और फल की ये दुनिया है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध की ये दुनिया है, इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए हमारी स्मृतियों को पहला स्व परिवर्तन की जो राह है, जो मार्ग है, उस पर हमारे स्मृतियों को ज्ञानयुक्त श्रेष्ठ शुद्ध समर्थ बनाने की जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ भी एक श्रेष्ठ कर्म है जिसके आधार से ही हम भविष्य प्रारब्ध पा सकते हैं। ये हम अच्छी तरह से इसकी जो एनलाइटमेंट होवे ना, जो साइलेंस में एकदम जहाँ मेरी अंदर की दुनिया की खोज की शुरुआत है, अगर श्रेष्ठ स्थिति को बनाना है मुझे तो मुझे ये अंदर की दुनिया में अपने को अच्छी तरह से समझने की, उन समर्थ स्मृतियों में रहने की जो पुरुषार्थ है ना, इसमें कभी कोई अलबेलापन नहीं होना चाहिए। सी ज्ञान में आने के बाद चार बूले होती है। एक है ज्ञान को अच्छी तरह से गहराई से जब हम समझते नहीं हैं, कर्म क्षेत्र के कर्मों की एक जो बाबा कहता है ये लॉ है, जो जैसे करेंगे पदम गुणा, या तो पाएंगे या तो पदम गुणा उसकी सजा, ये संगम की लॉ है कर्मों के लिए। दूसरी युगों की अलग ला है लेकिन संगम की ये ला है। अगर इसको हम अच्छी तरह से समझते नहीं हैं तो बचपन की भूले बहुत होती है, अरे ऐसा भी होता है क्या, मालूम ही नहीं था। तो ये इनोसेंस इज क्राइम, हमें मालूम नहीं था हम कर दिया, उसका कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, कर्म के अनुसार उसका फल निश्चित हो गया जो आप उससे बाहर नहीं आ सकते हो। दूसरा है बेपरवाही की भूले, हाँ ठीक है करेंगे ना, बाबा तो बोलता है आज नहीं तो कल करेंगे, सो क्या हुआ, ऐसे बाबा की भी परवाह न करना, अपनी प्रारब्ध की परवाह न करना, समय की परवाह न करना, और हमारी जिम्मेवारियाँ इतनी बड़ी ऊंची जिम्मेवारियाँ भगवान ने दिया है, उन जिम्मेवारियों को परवाह न करते हुए हम जैसे चाहिए वैसे चल पड़े, तो उसका सोच समझ के ना करे तो ये बेपरवाही की भूले। जो ज्ञान में आते ही जब थोड़ा आधा बहुत समझते हैं तो हम ऐसे चला लेते हैं, चलते भी है चलाते भी है, तो इन भूलों की क्षमा कम होती है। माना बाबा की कई बातों की रियायत नहीं है। दूसरी है अलबेलेपन की भूले और आलस्य की भूले, वो तो आप सब जानते हो। आलस्य अलबेलेपन की भूले क्या होती है, नियमों को पालन करने में थोड़ी बहुत आज ठीक है कर लो कल देखेंगे, केयरलेस कर लिया तो ये नहीं चलेगा, आज नींद आ गई अमृत वेले चलो चल लिया, थोड़ा सो गए चला दिया, तो लेकिन उस दिन के नियम या आधा उठे आधा नींद कर दिया तो आधा ही आपको नियम पालन में मार्क होगा, बाकी आधा बोझ में जाएगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा चिंतन नहीं है, ये बाबा की महावाक्य है, तो जिसने बाबा कहता जो जितना चलते हो वो आलस्य हो या केयरलेस हो उस प्रमाण ही आपको मार्क मिलेगा। एक्स्ट्रा आप बच्चे हो उसका कोई रियायत नहीं है। क्यों? ये कर्म क्षेत्र है, जो जितना करेगा उतना पाएगा। भगवान लॉ मेकर है, वो ब्रेक नहीं कर सकता। तो इसलिए एक ही संगम युग है सारी सृष्टि चक्र में, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने की, श्रेष्ठ स्थिति के आधार से सर्वश्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने का जो ज्ञान अर्थात समझ मिलता है। सिर्फ समझ नहीं मिलती, लेकिन वो करने के लिए सारी शक्तियाँ, वो करने के लिए भगवान के डायरेक्ट सहयोग मिलता है। बड़ी बात ये है, भगवान स्वयं सर्व संबंधों से हर वक्त मुझे सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। वो रेडी है, सिर्फ आप बोलो वो कर देगा। यहाँ तक बाबा हम बच्चों को इतना जिगरी दिल से सहयोग देता, अगर उतना देने के बावजूद हम ये श्रेष्ठ स्थिति बनाने में जो सूक्ष्म पास्ट की संस्कार है उसको बीच में लाते हैं तो स्थिति साधारण हो जाती, स्थिति फिर नीचे आना चालू हो जाता है। तो उसमें मेन बात जो है ना, प्रभाव। इन चार बुलों के पीछे प्रभाव लगाव ही नहीं होता कईयों का तो लगाव के कारण होता, कईयों का संबंधों में संग में प्रभाव के कारण, दूसरों का बातें देख के या देखने के बाद उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉलो करना, बातों में आ जाना, उसके कारण सर्वश्रेष्ठ स्थिति ना बनने का कारण या परदर्शन है या उसके पीछे चिंतन है या उसके पीछे उनकी बातों पे चलना, परमत की बातें, जिस कारण हमारा श्रेष्ठ स्थिति नहीं बनती। जिसमें मैं सदैव अपने सूक्ष्म संकल्पों के आधार से, चिंतन के आधार से जो मेरी भावनाएं स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति पावरफुल बनती है, जिससे वृत्ति से वायुमंडल, वार्ता से वायुमंडल, वायुमंडल जो बनता है दो चीज़ों से बनती है। सारा दिन मेरी भावनाएं क्या हो रहा है, सारा दिन मेरा बोल चाल क्या है, मैं चल भी रही हूँ किस वृत्ति से चलती हूँ, उसके आधार से मैं वाइब्रेट करती हूँ, वायुमंडल बनता है।
Thank you.
अगर ये तीन बातें नहीं हैं, कई अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे हैं जो कभी कोई प्रभाव में नहीं आते, ना कोई परदर्शन परचिंतन में आते नहीं हैं, फिर भी उनका स्थिति बढ़ता नहीं। चाहते हैं हम बहुत कुछ अपना स्थिति बनाएं, अच्छी तरह से हम योग करें, सारा दिल होता, लेकिन होता नहीं, कर नहीं सकते। इसका कारण जो आज बाबा ने कहा, पिछले जन्मों का बोझ है, जिस कारण बुद्धि इतनी, बाबा कहते हैं ना, मोटी बुद्धि होती है जिसमें सूक्ष्म ज्ञान की राजों तक जा नहीं सकता। जब आपको लगता है कि ज्ञान की जितनी गहराई है मैं उसके अंदर नहीं जा पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, तो बाप को सच्ची दिल की महसूसता से आप लिखो रात को और सुबह अमृत वेला, एकदम पावरफुल लाइन क्लियर योग में बैठना, एकदम अलर्ट, नींद की थोड़ी भी ट्रेस ना हो, बाबा से बैठ करके बोलो और एकदम क्लियर बाबा के सन्मुख जैसे आप हो और बाबा आपको वरदान दे रहा है, बाबा की वरदानी हस्त आपके सिर पर है, रोज आप करते जाएंगे अपने स्वमान में। मैं ज्ञान सूरी का बच्चा, मास्टर ज्ञान सूरी हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान मेरे बुद्धि को टच कर रहा है और बाबा मुझे विशेष दिव्य बुद्धि का वरदान दे रहा है। ये अनुभव बार 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 अमृत वेला भी करो, बार बार करो, फिर आपकी बुद्धि बदलती हुई समझ में, अनुभूति में आएगा। अभी सब बातें स्पष्ट है, ज्ञान और बाबा की श्रीमद, जो बाबा जैसा चाहता है आपकी बुद्धि में ऐसा स्पष्ट होगा और वो करने की भी ताकत मिलता जाएगा। तो इसलिए ये बात हमें अपना पिछले का खड़ा हिसाब कैसे दिखाई पड़ेगा, या तो बुद्धि मोटी होगा, या तो कोई ना कोई ऐसे कड़ा संस्कार होगा जो आपको आगे जाने नहीं देगा। बार बार वो संस्कार आपको विघ्न रूप बनेगा, संबंधों में भी, संबंधों के कारण, थोड़ा भी पुरानापन की हलचल के कारण वो जो बोझ बनता, वो फिर पावरफुल योग, पावरफुल स्थिति बनने नहीं देगा। तो इसकी सावधानी, इसका अटेंशन हमारे जीवन में बहुत चाहिए। अगर हमें श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो ये पास्ट की हिसाब किताब जो हम संस्कारों के रूप में लाए हैं, उन संस्कारों को कर्मों में, संबंधों में आने नहीं देना है। अगर आ गया तो फिर वो बोझ हमें बिल्कुल उड़ने नहीं देगा और नीचे लाता जाएगा। आप बैठेंगे योग में, बुद्धि और बातों में जाएंगे। आप जिगरी सोचते हो बाबा मैं आपकी हूँ, लेकिन तुरंत बुद्धि और कहाँ जाएगा। बैठेंगे ज्ञान की चिंतन करूँ, बाबा की मुरली बहुत अच्छा लग रहा है, रस आ रहा है, लेकिन आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद वो चिंतन में नहीं आता, वो कभी याद भी नहीं, कामों में दूसरे सेवा भी हो, लेकिन सेवा भी साकार की बातें होती है ना, तो उन बातों में भी वो थोड़ा बेटर है, लेकिन स्थिति बनाने के अटेंशन में क्या क्या बातें मेरी जीवन में, कहाँ कहाँ ये सूक्ष्म जो विघ्न है अंदर, तो वो उसको बाबा को बोल करके आपको खत्म करना है। एकाग्रता अपने स्वस्वरूप की, स्वस्थिति की, या समान की भिन्न भिन्न पोजिशंस में अगर एकरस एकाग्रता, पहले 5 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, आधा घंटा तक देखो, अगर उसके बीच में बुद्धि इधर उधर हो जाती है तो ये बोझ है। लेकिन कौन से बोझ है आपको ये पहचानना है, किस कर्म के कारण ये मुझे गड़बड़ कर रहा है, ये परखने की शक्ति अपने अंदर। सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए निरंतर परखना, अपने आप को परखना, अपने ऊपर निर्णय लेना, ये बहुत 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 जरूरी है जीवन में। अगर मैं अपने आप को समझने में पीछे रह गई, फिर मेरा बदलाव मुश्किल है। मेरा क्या संस्कार है ये पहचानना, अपने आप को पहचानना, ये जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, जिस स्वरूप में हूँ, जिस रीति से मैं आया हूँ, दुनिया तो जानती नहीं, मेरे बच्चे भी नंबरवार है, ऐसे मैं भी जो हूँ, जैसी हूँ, जिसकी हूँ, जिस संस्कार वाली हूँ, जिस कर्म बंधनों से मैं यहाँ आई हूँ, ये सब पॉजिटिव साइड्स जितना समझते हो, नेगेटिव साइड से भी, जिन कर्म बंधनों से, जिन संस्कारों से, जिस रीति से मैं आई हूँ, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं उसको बदल सकूँ। मैं पहचानूँ तब बदलूँ ना, मैं ऐसे ही सोचूँ मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, योगी हूँ, हो गया, ज्ञानी हूँ, हो गया, नहीं। क्योंकि ये जन्मांतर के संस्कार हैं, देह बांध में आना, आत्मा को ये गहरा आदत के साथ लगाव है। हर एक के बड़ा बड़े थे बड़ा अंतिम पेपर तक पीछा करने वाली वो अपने आत्मा को अपने शरीर की जो लगाव है वो छोड़ता नहीं है इतना ईजी। फाइनल नष्ट मोहा स्मृति लब्धा भवा, वो अपने आप से नष्ट मोहा, शरीर से होने के बाद आत्मा को अपनी बुद्धि की अभिमान, अपनी जो ज्ञान योग की, अपनी गुणों की, अपनी सेवा की जो अभिमान है, इसमें अपने को नष्ट होना, ये पेपर्स है। और मैं जो मेन संस्कार, जो निर्बल कमजोर संस्कार लाई हूँ, अपने आप को इस बात को समझना जरूरी है। उसके बिगर कहीं ना कहीं वो संस्कार श्रेष्ठ स्थिति बनाने जाओ तो किसी न किसी रूप में आ जाता है, बीच बीच में, बीच बीच में जो विघ्न डालता है। आप समझते हो जब हम आए थे तो बहुत अच्छे थे, इतना ज्ञान योग धारणा सेवा, बाबा बिगर कुछ सूझता ही नहीं था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे वो खुशी, वो नशा, वो आनंद, वो प्यार, वो लगन कम क्यों होता, क्योंकि ये वार है, ये संग्राम है, ये संघर्ष है, जिसमें माया अपने रीति से इस मार्ग में चलने में, विजयी बनने में अपने ही तरीके लेती है। बहुत रॉयल सूक्ष्म जो बिल्कुल नीचे गिरा देता है। क्यों नहीं हम चाहते, हर एक हम चाहते हैं, सदैव मैं विदेही रहूं, सदैव मैं उड़ती रहूं, सदैव मेरे बुद्धि का नेत्र बाबा को देखते रहे, एक सेकंड भी बाबा से मैं अलग ना रहूं, ये हमारा दिल कहता है, हमारा प्यार कहता है, हर बच्चा बाबा का ये चाहता है। लेकिन जो ऐसी ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, जो सिर्फ एक बाप याद रहे और कुछ ना याद हो, इससे ऊंची और कोई स्थिति नहीं है। जिस इस स्थिति से सारी आप विश्व से बात कर सकते हो, सारी वायुमंडल को बदल डाल सकते हो। जो आत्मा आगे आती है उस आत्मा की परिवर्तन ही नहीं, उसको जो चाहे वो मिल जाता है। इतनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन उस स्थिति में हम सब चाहते हुए भी ये जो नहीं होने की बात आती है, ये जो अंदर की डाइवर्शंस है, तो इसका मूल कारण अपनी पहचान। ये जो टॉपिक इस बार एनलाइटमेंट थ्रू साइलेंस जो लिखा है ना, एनलाइटमेंट में आपको ये एक दिन तो चला गया हाथ से, लेकिन अभी जो बचे हैं ना दिन, उसमें आपको अपने को खोजना है। व्हाट एम आई, अच्छी तरह से आपको खोजना है मैं रियली क्या हूँ और मैं कैसी हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मेरी जिम्मेवारियाँ क्या है, और मेरा सृष्टि में एक ही बाप है सदैव, वो बाप मेरे से आता ही एक बार, और चाहता क्या है मेरे से। ये अच्छी तरह से अपने को अंदर की अपनी दुनिया में जाओ। साइलेंस, रियल साइलेंस वो है जो मुझे अंदर की रास्ता दिखाता है। जो अंदर में एक बार जाऊं, अपने अंदर के सुख, अपनी बिल्कुल मैं आत्मा मुक्त, वो जो सुख है, वहाँ जो शांति है, वो अनुभव करने के बाद आपको बाहर की बातें, दुनिया, संबंध सब निरस, पीका, तुच्छ लगेगा। ऑटोमेटिक वैराग्य आएगा। लेकिन अब जब तक आप अपने को खोजेंगे नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर, हाँ मैं आत्मा हूँ, हाँ मैं परमधाम से आई हूँ, परमधाम क्या चीज़ है, वो कैसा है, वहाँ मेरा बाप कैसा है, वो क्या है, वो महसूस करने लिए भी मुझे अपनी महसूसता चाहिए। ये स्थिति अंदर उस साइलेंस में, अपनी फ्रीक्वेंसी में अपने को ले जाओ गहराई से। उसके लिए एक जो बड़े से बड़ा विघ्न है, फाइनली जो आजकल विज्ञान भी कहता, जो कुछ भी जीवन में घटनाएं घटी है, जो कुछ भी अच्छा या बुरा, वो सारी बातें अंदर से अपनी जो मेमोरीज में, जो आपकी यादों में है, उसको खाली करो, बिल्कुल खाली करो। क्योंकि जो विज्ञान अभी रिसर्च में कहता, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, वो भी स्पेशली कई दुख की घटनाएं जीवन में घटी है, कोई आपको क्या बोला होगा, क्या किया होगा, आपसे अव्यवहार किया होगा, कुछ भी होगा, चाहे कोई की अच्छी मेमोरीज अटैचमेंट्स की हो, सब कुछ आज बाबा को देख करके खाली करो, फिर वो आपके मन पटल में ना आवे, तो आपके टाइम ना लेवे। क्योंकि जब वो यादें आती है आपके दिलों में, आपकी ब्रेन में, आपकी संस्कारों में एक गहरी छाप डालती है। जो छाप बार बार फिर रिपीट होता, वो ऐसी स्ट्रांग होता जो आपको अपनी अनादि, अपनी मुक्त निराकारी अवस्था, अपनी मुक्त प्यारे बाबा की, वो जो सुख है, उसका पवित्र प्यार है, वो जो आनंद है, वो अनुभव करने ये बातें नहीं देती है। बाबा को क्यों दियो, बाबा कहता आप कई मुरलियों में सुना होगा, साकार मुरलियों में भी, मैं बच्चों की अनेक जन्मों की जो दिलों में दुख है दर्द है वो सब लेने आया हूँ, बच्चे में ब्लॉटिंग पेपर, मैं सब कुछ सक कर दूंगा, आप मुझे दे दो, आप दिल से सब कुछ दो, आपको करना चाहते वो नहीं कर पाते हो ना, अगर वो भी दुख है बाबा हम चाहते हैं होता नहीं, वो भी बोलो दे दो, लेकिन रखो कुछ भी नहीं, जब तक ये नहीं देंगे अंदर खाली नहीं करेंगे हमारा श्रेष्ठ स्थिति बन नहीं पाएगा। मन में जो हूँ जैसी हूँ, चाहे हमारी दादी कहती थी चाहे काणे हो लूले हो लंगड़े हो कैसे हो क्या भी हो बाबा मैं तेरी हूँ, ये बुद्धि की जो सरेंडरिंग है ना वो कर दो, क्या भी हो बुद्धि डल है डड़े क्या भी है कैसे भी है दे दो, फिर देने के बाद अपने लिए फिर संकल्प नहीं करने का है मैं ऐसी हूँ, संकल्प यही हो कि समान के आधार एक निराकारी स्थिति जिसमें अशरीरी होकर के बाप की यादों में रहने का वो सर्वश्रेष्ठ ऊंची स्थिति है, उसके नेक्स्ट जो है एक बार बाबा को देने के बाद जो समान की स्थितियाँ है, मैं जो हूँ और जिसकी हूँ उसकी मैं बेटी हूँ तो मैं वही हूँ, शेर का बेटा बिल्ली या चूहा नहीं बन सकता ना, नहीं ना, तो बाबा का बेटा ऑलमाइटी का बेटा अथॉरिटी होगा, वो कोई अधीन गुलाम नहीं हो सकता है, मेरा बाप जगत की ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मेरा बाप सर्वशक्तिवान है, वो जगत का पालनहार है वरदाता है, मैं ऐसे वैसे स्वार्थी कंजूस गड़बड़ वाले नहीं हो सकती हूँ, ये अंदर की रियलाइजेशन सच्ची दिल के महसूसता से मैं मान लूँ बाबा मैं आपकी हूँ, आपका मैं दिल का टुकड़ा हूँ, मैं अलग नहीं हो सकती हूँ आपसे, जैसा बाप वैसा बेटा, अपने ऊपर कभी संशय आने ना दो, जो जैसे समान देता बाबा वही मैं हूँ, दूसरा मैं नहीं हूँ, मियाँ मिट्टू भी नहीं, लेकिन मैं वही हूँ ये नहीं, जो नहीं है उस स्थिति में आना नहीं है, उन संकल्पों में मुझे आना नहीं है, उन बातों में मुझे रहना नहीं है, ये मंजूर है, कहते हैं मंजूर है, मैं जो हूँ जिसकी हूँ, क्यों आदम बादा आत्मा ना अभी तक नीचे नहीं है, है ना पक्का है ना, मैं हम उसके ही है, कल्पांतर उसके ही है, अनादि उसके ही है, तो हम दूसरे कैसे हो सकते, माना हमारा दिल आधा ये मानता आधा वो तो ठीक है, बाबा तो बोलता है सर्वशक्तिवान है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ठीक है शक्तियाँ भी दिया है सिद्धियाँ भी दिया है, लेकिन क्या करे मैं मेरे से ये होता नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, तो माना आपने अलग मान के बैठे हो ना, अपन को आपने अपन को अलग माना है, जिस कारण वो जो दे रहा है वो ले नहीं पाते हैं ना, क्या क्या अपन को आप माना है, आज थोड़ी भी टाइम पर दो मिनट नहीं पांच मिनट भी आप देखो आप अपन को क्या मानते हैं? रियली मैं आत्मा जगत की फाइनल अथॉरिटी भगवान का बेटा प्रैक्टिकली साकार में सर्व संबंधों से वो मेरा सब कुछ है ये मैंने माना है, जाना है वो अलग, माना है समझा है पहचाना है, ये आप हरेक अपने दिल से पूछिए, फिर वो नशा, उसका मैं बेटा हूँ, वही प्राइम मिनिस्टर की बेटा भी कितना नशे से चलता है, साधारण एक मिनिस्टर की बच्चा भी, उसका सिर नीचे नहीं रहता। तो हम किसके बच्चे हैं? राजाओं का रचयिता, स्वर्ग का रचयिता, जिसके हाथ में सारी सृष्टि की चाबी है, ऐसे बाप के बच्चे हम हैं, तो हमारा स्थिति सदैव श्रेष्ठ तब हो सकती जब बाप की उस बाप के मैं बेटा बेटा ही रहूं, बालक सो मालिक, मैं बालक के बाद दूसरा ना मानूं, लौकिक भी आया, तीसरा भी आया, वो भी आया, ये मिक्सचर यहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ है, बाबा सच्चा है, सत्यता सच्ची दिल ही यहाँ चल सकता, मिक्स नहीं चल सकता है, थोड़ा देह, थोड़ा संस्कार, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा इसका प्रभाव, थोड़ा उसका प्रभाव, बाबा के साथ ये नहीं चल सकता। बाबा उसको मना, जो भी हमारा चार बातें हैं ना संबंधों में, बाप टीचर सतगुरु में, फरमान बरदार, वफादार, ईमानदार और आज्ञाकारी, ये चार बातें तीनों संबंधों में अगर ठीक तरह से बिल्कुल मैं संबंधों के आधार से ये चार बातें सदैव बाबा से मैं हॉनेस्ट पिताव्रता पतिव्रता होकर के रहूं, वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति, सर्वश्रेष्ठ स्वमानों के सीट पर आप ही ठहराएंगे। आप कुछ करो ही नहीं, बाबा ही खींच खींच के आपको ताकत देगा, भरेगा। तो ये स्थिति बनाने के ये सहज साधन है। जितना स्थिति से मेरी स्मृतियों के आधार से जो वृत्ति, जो भावनाएं बनती है, उन भावनाओं का असर वायुमंडल के पहले अपने शरीर के अंदर जो वायुमंडल है इसको बदलना है। पिछले कर्मों के अनुसार, पिछले ज्ञान के पहले हमारी संकल्प, हमारी संबंध, हमारे व्यवहार, हमारे कर्मों के आधार से हमने बहुत गलत गलत स्मृतियों के आधार से, भावनाओं के आधार से हमारे सेल्स में गलत बातें भरा है। हमारे शरीर की वायुमंडल को भी अब बदलना है। ये विज्ञान है जो कहता है इतने ट्रिलियंस सेल्स हमारे शरीर में जो है, हर सेल में इंटेलिजेंस है। जो आप जिस भावना से जो संकल्प करते हो वो भर रहे हो आप, उस अनुसार हमारे शरीर में इतनी सारी संकल्पों के भावनाओं के अनुसार बदलाव हो रहा है। प्रकृति है ना, ये शरीर प्रकृति है। जैसे मेरे शरीर के अंदर बदलाव होता, तो मैं जहाँ बैठी हूँ, जिस स्थान पे बैठी हूँ, या जिस कमरे में आप हो, जिस घर में आप हो, वहाँ के आप हर आटम को आप अपनी भावनाओं में, अपनी संकल्पों में वाइब्रेट करते, वहाँ की वायुमंडल को आप बदला रहे हो, चाहे अच्छा, चाहे व्यर्थ, चाहे नेगेटिव, चाहे अशुद्ध, जो कुछ भी आप भर रहे हो उस अनुसार उसका जो रिफ्लेक्शन है, से हरेक का ये कंप्लेंट, कॉमन कंप्लेंट है। सभी कहते हैं बाबा योग में बैठने से व्यर्थ चलता है। व्यर्थ किस लिए चलता, वो मेरा ही क्रिएशन है, जो मैंने वायुमंडल बार बार सोच सोच करके बनाती हूँ, वायुमंडल वापस मुझे ही वो हिट करता है ना, मेरा ही वायुमंडल मुझे ही डिस्टर्ब करता है, जिस कारण फिर वही यादें, वही संकल्प, वही बातें आती हैं, तो जिसका प्रभाव से वो संस्कार और गहरा होता जाता है। इसलिए इस सीजन की सारी मुरलियों में आप देखो, बाबा कहते हैं मन को पावरफुल बनाते, शक्तिशाली शुद्ध बनाते हुए बचे वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। बार बार बाबा कहता वायुमंडल में करो, वायुमंडल जितना शक्तिशाली उतना आत्माओं को जो चाहिए वो मिलता जाएगा। वो कब करना है? हम अपने शरीर को ही बदलना है ना, शरीर की हर सेल की, हर टिश्यू की, हर मसल में जो कुछ भी है, आप अपने सोच अनुसार, अपने संकल्प अनुसार पहले इसको बदलते जाना है। इसका प्रभाव जितना हम अंदर की दुनिया, जितना अंतर्मुखी होकर के करते जाएंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाते जाएंगे, उतना जहाँ आप बैठे हो उसको टेम्पल की वायुमंडल बनाओ। चाहे आपकी कमरा हो, आपका घर हो, आप कहीं भी हो, शरीर के अंदर बदलाव तो आता ही है, लेकिन जहाँ आप हो उस वायुमंडल को बदलो। तो लोग आवे तो समझे कि ये कोई आत्मा विशेष एक देव के पास आई हूँ जिससे मुझे जो चाहिए मिल सकता है। उनको आते ही कुछ न कुछ ऐसे प्राप्तियाँ हो जाए, कुछ न कुछ उनका आपके संग से उनकी समस्या हल हो जाए, आपके संग से उनको हिम्मत आ जाए, आपके संग से उनका दिल खुश हो जाए। कुछ न कुछ आप देने बिगर, बाबा ने कहा है आप खाली हाथ किसी को भेज नहीं सकते हो, ये आज्ञा है बाबा की। लेकिन वो स्थिति बिगर, हमारी भावनाओं के बिगर हम दे नहीं सकते हैं। हमारी वायुमंडल में, हमारी जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति में जो श्रेष्ठ संकल्प समर्थ है, श्रेष्ठ अपनी पोजीशन, समान की पोजीशन में हम आत्माओं ने माया को, माया की अपोजिशन को भी खत्म करें, एक ज्ञान की एक मैच्योर्ड माइंड रखो अभी, जिसको एनलाइटमेंट शब्द इंग्लिश में दिया गया है, ज्ञान की मैच्योरिटी, बुजुर्गपन ऐसी हो, अरे देख लिया दुनिया को, देख लिया संबंध को, देख लिया पैसे को, संपत्ति को, देख लिया साधन को, इसमें कुछ भी नहीं है। फाइनल निर्णय लो आप, किसी में कुछ भी नहीं है, कुछ है तो सिर्फ बाप में, सिर्फ बाप में सब कुछ है, बाप से सब कुछ मिल सकता। ये फाइनल निर्णय ऐसा लो, फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं, कहीं भी नहीं, कोई प्रभाव, कोई संबंध, कोई सेवा के मान शान शो ये सब छोड़ो भी, इसमें कुछ है ही नहीं। और ये आपको क्लियर रहे कि सेवा अभी हम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बाबा सेवा की डोरी अपने हाथ में लिया है, अपने टचिंग्स दे रहा है, सिर्फ बाबा के बच्चों को, ब्राह्मणों को नहीं, ये बाबा दुनिया वाले आत्माएं, भगत आत्माएं सबसे काम करा रहे हैं, चालू कर दिया है। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अभी अभी ये वो ऐसे वैसे इसमें नहीं जाओ। स्थिति जितना स्थिति बनाते हैं आप, देते जाओ बाबा की खजानों को, देते जाओ। अभी भटकना बुद्धि से छोड़ दो, ये वो ये वो ये वो नहीं, जो लेना है सेवा बाबा को आपसे ले लेगा। आप ज़्यादा नहीं सोचो, आप अपने स्थिति के स्वस्वरूप की एकाग्रता और स्थिति की एकाग्रता के ऊपर काम करो। ये जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है ना, पहला जो बिल्कुल विदेही अशरीरी या निराकारी स्वरूप में कितना टाइम में एकरस एकाग्र रह सकती, एक मिनट, दस मिनट, आधा घंटा, देखो मिनट मिनट बढ़ाओ। ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी रक्षा है, ये श्रेष्ठ स्थितियाँ। बाकी आप जितना भी सेवा किया है, स्थिति बिगड़ वो जीरो है। बाबा बता दिया है ये, मैं नहीं बोल रही हूँ। इसलिए स्थिति पर ध्यान दो, फिर फरिश्ता में देह से अलग अपने आकार में कितना टाइम क्लियर कट में बिंदु, वो तेजोमय आकार, वो प्रकाश, वो पवित्रता, उसमें कितना टाइम ठहर सकती हूँ, एक देह से बाहर एक ऊपर वतन में बाबा को देखते हुए अपने आकार में कितना टाइम, उस एकाग्र चित्त और वृत्ति की, मन और बुद्धि की एकाग्रता, ये नेक्स्ट जो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जिसमें मनसा सेवा के लिए आपको ट्रैवल करना है। इधर से कहीं जाना है, इधर से बाबा के पास, वतन में ही नहीं दुनिया में किसी भी कोने में जाके कुछ भी मदद करना है वो आप कर सकते हैं। देखो नज़दीक वालों को देखो, आप जो सोचते हो उसको कितना टाइम में पहुंचता है। अगर देह से बाहर आकार में रह के करना है कितना टाइम, उस वायुमंडल में आप उस स्थिति में हो, कोई आता है आपके प्रति उनका महसूस था, उनकी फीलिंग्स क्या होती वो देखो। वायुमंडल में परमात्म प्रत्यक्षता माना बाबा की गुणों की, बाबा की प्यार की, एक निस्वार्थ पवित्र प्यार की फीलिंग्स, और एकदम आत्मा को एक सुकून मिल जाए, शांत हो जाए, वो हिम्मत उसका बढ़ जाए, तो बाबा की जो भी गुण है जिस वायुमंडल आप याद में हो वहाँ उसको मिल जाए, ये है बाबा की प्रत्यक्षता। अलग अलग लेवल पर, अगर और बहुत पावरफुल योग में हो, आपके मस्तक से जो हमने कहा मैंने क्या देखा दादियों में, तो वो अनुभव हो। और कई जानकी दादी का, बाबा की, साकार बाबा मम्मा की बातें आप सबने सुनी हैं कि वो कैसे अपने श्रेष्ठ स्थितियों में रहे, और वो स्थिति में आए ऐसे ही नहीं आए। आप यज्ञ की बातें सुनो तो आपका दिल धड़केगा, क्योंकि दादियाँ कहते थे उसी टाइम कोई दूसरे बाहर के लोग नहीं थे, अंदर हम जैसे कि दुनिया से कट ऑफ थे, मम्मा बाबा और हम बच्चे। 350 लोगों का इवन कर्मणा सेवा भी तो बहुत कुछ होता है, खाना बनाना, उसका क्लीनिंग सारा। वो कहते थे हम पोछा भी हम ही लगाते थे, सब क्लीनिंग हम ही करते थे, वॉचमैन काम हम ही करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन घंटा घंटा अपना साधना, सुबह 2 बजे से लेकर क्लास के बाद घंटा, फिर रेस्ट के टाइम घंटा, फिर शाम के टाइम घंटा घंटा बैठ करके विदेही होने में हम अपने को कूटते थे। एक बिल्कुल मस्तक बीच बिंदु जो दिखता नहीं वो दिखे, वो बुद्धि से देखने लिए, और उसके बिगर और बुद्धि कहीं नहीं जावे, उसके लिए हमारी प्रैक्टिस बहुत बाबा कराता था। लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाने की जो साधन है, योग साधना जो करनी है, बाबा से जो ताकत लेनी है, हम कितना करते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्थिति ऐसे कैसे आएगा? आप मुरली सुन लिया, चले गए, ओम शांति हो गया, और योग के बाद भी मैं देखती हूँ धड़ 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 करके उठ जाते हैं। बैठो आराम से, शांति से बाबा के पास गोद में, वो सुख का, आनंद का अनुभव करो, धीरे से आके अकाल सिंहासन पर बैठो, शांति से उठो ना, एकदम वो ये ओम शांति हो जाती है सेकंड में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासेस में भी मैं देखती हूँ सब तरफ जैसे कि बहुत अर्जेंसी है। अर्जेंसी किस बात का है? सही सेकंड में गए तो गए, आपको कौन देखेगा बाद में। अभी भी ऐसे ही समझो ना, हमारी दादियाँ कहती थी, कोई कहता था दादी क्या गया, दादी अर्जेंट है, क्लास के बाद मैं जल्दी उठता हूँ, तो दादी कहती थी ऐसे क्यों, सही कुछ भी इमरजेंसी कुछ भी आता है तुम ऐसे भागेंगे क्या, नहीं ना, हेल्थ का कुछ भी गड़बड़ होता है तो भागेंगे नहीं, ऐसे ही शांति से रहो, योग करके आराम से जाओ। दादियों का सारा जवाब ये होता था, ऐसे नहीं, दादी कहती थी आपका काम आपे ही होगा, तुम योग तो ठीक करो, ये प्रयोग करके देखिए, हमको अलर्ट रहना है, ऐसा नहीं है केयरलेस पे रहना है, लेकिन योग से जो काम होता वो असंभव संभव होता है, ये उपयोग करना है। आप तकर तकर करेंगे तो आपका सेल भी भागेगा, वो क्या होगा, वो परेशान होंगे अंदर, हेल्थ की गड़बड़ी तो ऐसी होती है, हाँ, अंदर सारा संकल्पों में खिच 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 खिच, एक के बाद संकल्प चलता, बेचारे वो सेल्स भी वो अशांत हो जाते हैं, परेशान वो आता है बीमारियाँ। ये रिसर्च की बातें बोल रही हूँ, ये हमें बिल्कुल, मैं आत्मा शांत हूँ, अपने को शांत रखो, शांत माना लेजी नहीं, शांत माना अलर्ट एक्टिव भी हो, लेकिन अंदर एकदम अपना साइलेंस, अपने स्वरूप के जो मैं सत चित्तानंद स्वरूप बिंदु, उसका अनुभव करना है। तो ये जो वायुमंडल बनाने में सारा दिन आज हम सब प्रॉमिस करें बाबा से, प्यारे बाबा आज के बाद मेरे वृत्ति, मेरी भावनाएं, मेरे जो चित्त है वो सदैव शांत प्रेम वाला आनंद वाला, सदा शुद्ध भावनाओं द्वारा, दया भावनाओं द्वारा, दाता भावनाओं द्वारा, हर एक के प्रति कल्याण की भावनाओं द्वारा भरा हुआ, जो कभी भी ऐसे वैसे हम नहीं करेंगे, ये मंजूर है। और बोल में कभी भी बाबा जो बोलता है, पैरेट भले बनो, जो वो बोलता है वही हम बोलेंगे, जो सेवार्थ आवश्यक बातें है वही बोलेंगे, दूसरा तीसरा हम बातें नहीं करेंगे। कोई भी प्रकार की स्वार्थ रख करके हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी का संकल्प नहीं चलाएंगे। सी हमारे कर्मों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाने का और एक उसका जो ऑब्स्टिकल है, बाधा है, अगर हम किसी और को डिस्टर्ब करते हैं हमारे चाल चलन के कारण, हमारे व्यवहार के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण, उनकी जो हलचल है कभी भी आपकी स्थिति ऊंचा उठने नहीं देगा, ये लिख लो, कभी नहीं हम ऊपर आ सकेंगे किसी को डिस्टर्ब करके। हम सदैव इसका ध्यान रखें, कर्म और फल का ज्ञान हम सबको है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पक्का है हमको, और हमारे से वो जो सूक्ष्म बॉडी कॉन्शियस की स्वार्थ की जो वाइब्रेशन जाता है वो वायुमंडल में घूमता है, जिस वायुमंडल के कारण और दूसरे आत्माओं को हम मनसा से भी अशांत कर रहे हैं, व्यवहार से कर्मों से कर रहे हैं, ये हम ना करें, नहीं तो हमारी सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो बनेगा नहीं, लेकिन हमारी जो बाबा दुख हरता है ना, सुख करता है ना, हम सुख क्या दिया, हमारे स्वार्थ के कारण दूसरों को डिस्टर्ब कर दिया, ये कर्म फिलॉसफी है। जगदीश भाई सदैव कहते थे, स्वप्न संकल्प में भी कभी किसी को दुख न दो, किसी को दुख दे दिया उनका आहट है ना अंदर, अरे इसने ऐसा किया, हम कितना इसके ऊपर विश्वास रखा था, वो आहट आपको ना जीने देगा, मरने टाइम दुखी होके मरना पड़ेगा, राधा जी कहते थे साकार बाबा की बात। इसलिए कभी भी स्वप्न संकल्प में आपको कोई कुछ भी करे लेकिन आप किसी को दुख ना दो, स्वार्थ में नहीं आओ, स्वार्थ बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, राइट निर्णय नहीं लेने देता है। इसलिए स्वार्थ की बहुत सूक्ष्मता है, बहुत बड़ा विस्तार है इसकी। हम सोचेंगे सेवा के लिए लेकिन होता स्वार्थ है। तो ये बिल्कुल परखना अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, इसकी बहुत अटेंशन चाहिए। ठीक है, तो टाइम हो रहा है, तो जब तक हमारी वृत्तियों में बदलाव नहीं, चित्त में बदलाव नहीं, हम अपने सर्वश्रेष्ठ स्थिति बना नहीं सकते। पिछले संस्कारों को इधर ये भी रखो वो भी रखो, दो लड्डू हाथ में, ये नहीं हो सकता है। तो इसको चेंज हम करें, ताकि हम बाबा को, हम सबका दिल है जल्दी जल्दी बाबा को प्रत्यक्ष करना है, दुनिया में लाना है। वो तब होगा जब बाबा जैसे स्वरूप संस्कार, उनका जो गुण है, उनकी जो शक्तियाँ है, हमारे व्यवहार में आए, उसको हम वायुमंडल में लावे, तभी हम हमारे हर कदमों से प्रत्यक्ष कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। हम सभी अभी 10 मिनट इस बात की हम अभ्यास करेंगे। हमारे शरीर बिंदु लाइट विदेही अपने स्वरूप की एकाग्रता में बिंदु लाइट मन बुद्धि चित्त वृत्ति अपनी अति सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप में एकाग्र। स्टॉप योर थॉट। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने आकारी प्रकाश कर्म में बिंदु अपने आकारी कारुप को स्पष्ट देख रही। प्रकाश ही प्रकाश के आकार उसमें मैं तेजोमय बिंदु चारों लाइट एंड माइट फैला रहे मैं बिंदु हूँ, अति शांत, साइलेंस की एक गहरी अनुभव में एक रसी का एकाग्रता, अपने आप को स्पष्ट देख भी रही हूं, आकार को भी देख रही हूं, सेकेंड में ही सूक्ष्म वतन बाप दादा के पास, बाबा के आकारी स्वरूप को देखते, बाप के प्यार भरा दृष्टि, वरदाने हस्त मेरे सिर पर, के प्यार में खो गई, लवलीन हूं, सेकेंड में निराकारी दुनिया, साइलेंस की दुनिया, बाबा जहां मेरे सन्मुख है समीप, गहरी साइलेंस, प्रकाश के सागर के शीतलता, अति साइलेंस, जहां मैं अपनी संपूर्ण मुक्त स्वरूप के सुख और आनंद के अनुभव कर रही हूं, संकल्पों से अतीत, मैं मास्टर बीज रूप बाबा के पास खो गई।